और जब देख उन्होंने मना किया, समझ रहे हो, देवताओं को रोक दिया है कि रुको 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 ऐसे मत जाओ, उसने मना किया। तत्र कंदर्प लावण्याम श्याम सुंदर विग्रहाम द्वारे गंतुम चाभिधिताम निषेधन कृष्ण पार्षदाम। अब देवता लोग बोले, अरे हम तो ब्रह्मा विष्णु शंकर नाम के लोकपाल इंद्र आदि देवता हैं, हमको रोक रहे तुम। वो बोले, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यहां आए हैं हम लोग, मतलब हम लोग बहुत बड़े व्यक्ति हैं, कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए हैं। लोकपाला वयम सर्वे ब्रह्म विष्णु महेश्वरा श्री कृष्ण दर्शनार्थाए सक्राद्या आगता यह। तो नारद जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने जो श्री कृष्ण की द्वार पालिकाएं थी अंतापुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई, तब एक सखी जो सत चंद्राणना नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे, हाथ में बेत की छड़ी लिए थी, बाहर आई और उनसे उनका अभीष्ट प्रयोजन पूछा कि आप लोग किस लिए आए हो। तत्वा तदिप्राय श्री कृष्णा है सखी जन देव प्रतिहारा गत्वा चांता पुरम परम तदा भी निर्गता काचिन छत चंद्राणना सखी पीताम्बरा वेत्रहस्ता सा पृच्छन् वांछितम सुराम। अब ध्यान से सुनिए, उसने क्या पूछा। सत्चंद्राणना बोली, यहां पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के निवासी हैं, ये शीघ्र बताइए। उसने पूछा, आप लोग कौन से ब्रह्मांड से आए हो। तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। कश्यांडस्याधिपा देवा योजन सर्वे समागता वदता सो गमिष्यामी तस्मै भगवते अहम्। तो देखो कृष्ण का निवास स्थान कैसा है, सोचिए। वहां पर एक द्वारपाल बनी है एक सखी, वो पूछ रही तुम लोग किस ब्रह्मांड से आए हो। देवताओं ने कहा, अहो यह तो बड़े आश्चर्य की बात है, क्या अन्यान्य ब्रह्मांड भी हैं। हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। हे सुबह, हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। अहो अंडान्युतान्यानी नास्माभिर्दर्शितानि च एकमंडम प्रजानी मोथो परम नास्ति नाथुभिम। सत्चंद्राणना बोली, अरे ब्रह्मा जी, कहती है ब्रह्मदेव, यहां तो गिरजा नदी में ही करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, आप वहां की बात कर रहे हो जहां से आप आए हो, यहां पर भी तो करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, उनमें से आप जैसे ही पृथक पृथक देवता निवास करते हैं, हर ब्रह्मांड में तो ब्रह्मा है और सब देवता हैं निवास करते हैं। ब्रह्मदेव लुठंती है कोटिशो यंड राशियाम यथा देवा तथा पृथक पृथक। अरे अब देखो क्या कहती है, अरे क्या आप लोग अपना नाम गांव तक नहीं जानते। ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई। उसने कहा कि आप लोग अपने नाम गांव को भी नहीं जानते हो। कोई आपसे पूछे आप किस शहर से आए हो, तो आप कहो कि भाई क्या हम हमारे शहर के अलावा कोई दूसरा भी शहर है, तो हम तो एक ही शहर जानते हैं, है ना, तो बहुत हंसी उड़ाएगा आपकी। जान पड़ता है कभी यहां आए नहीं है, अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे हैं, जान पड़ता है कभी घर से बाहर निकले ही नहीं, ऐसा मालूम पड़ता है। नाम ग्रामम न जानी थे कदा नात्र समागता जड़ बुद्धिया प्रहर्षद्वे गृहणाम गृहान्नापि विनिर्गता। जैसे गूलर के फल में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते हैं एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हो। क्या बोला उसने, क्या बोला,
कलर के
बहुत छोटा बना दिया ब्रह्मा जी को बहुत छोटा बना दिया है कि गुलर के फल के अंदर कीड़े तो उसके आप बाहर जानते नहीं कि कितनी बड़ी दुनिया है तो आप लोग जानते नहीं कि ब्रह्मांड के अंदर आप सोचते हो कि बहुत आप जानते हो ब्रह्मांड में कम जानती इत्र जाता तथा जन मसका चाय था औदुम्बरे फले सुवैम। नारद जी कहते हैं राजन इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे कुछ बोल नहीं सके उन्हें चकित से देखकर भगवान विष्णु ने कहा अब भगवान विष्णु जो ना बुद्धिमान थे और कोई सब मूर्ख थे भगवान विष्णु ने उत्तर दिया उपहास्यम गता देवा इत्थम तोष्णे मिथिता पुनः चकिता निवृताम दृष्टवा विष्णु वचनम अब्रवी। श्री विष्णु बोले अब विष्णु परिचय देते हम कौन से ब्रह्मांड से आए हैं जिस ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण गर्भ का सनातन अवतार हुआ है और त्रिविक्रम के नाखून से जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया है हम वही निवास करते हैं बताया पहचान ये है यस्मिन्नंडे कृष्ण गर्भो अवतारो भूत सनातन त्रिविक्रमे नखोद भिन्ने तस्मिन्नंडे स्थिता वयम। नारद जी कहते हैं भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सत्यचंद्राणा ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की कि हाँ तुम जानते हो कुछ तुम्हें कुछ पता है धन्यवाद धन्यवाद भगवान विष्णु को बोली और स्वयं भीतर चली गई फिर शीघ्र ही आई और सबको अंतःपुर में पधारने की आज्ञा देकर वापस चली गई। तत्श्रुत्वा तम दशंश्लाघ्य शीघ्र अंतःपुरम गता पुनरागत्य देवेभ्यो प्याज्ञाम दत्वागता पुरम। फिर संपूर्ण देवताओं ने अब क्या देखा परम सुंदर धाम गोलोक का दर्शन किया वहां गोवर्धन नामक गिरिराज शोभा पा रहे थे। अथ देवगणा सर्वे गोलोकम दृष्णु परम तत्र गोवर्धनो नाम है गिरिराजो विराजते। गिरिराज का वह प्रदेश उस समय बसंत का उत्सव मनाने वाले गोपियों और गौओं के समूह से घिरा था कल्प वृक्षों और कल्प लताओं के समुदाय से सुशोभित था और रास मंडल उसे मंडित कर रहा था। बसंत माननी भिष्चम गोपीर भीर गोगण वृतहां कल्प वृक्ष लता संघ रास मंडल मंडितहां। वहां श्याम वर्ण वाली उत्तम यमुना नदी स्वच्छन गति से बह रही है तट पर बने हुए करोड़ों महल उसकी शोभा बढ़ाते हैं और उस नदी में उतरने के लिए वैदूर्य मणि की सीढ़ियां बनी हैं। हैं सुंदर यत्र कृष्णा नदी श्यामा तोलिका कोटि मंडिता वैदूर्य कृत सोपाना स्वच्छंद गति रुत्तमा। वहां दिव्य वृक्षों और लताओं से भरा हुआ वृंदावन अत्यंत शोभा पा रहा है भांति भांति के विचित्र पक्षियों भ्रमरों और बंसी बट के कारण वहां की सुषमा और भी बढ़ रही है। वृंदावनम भ्राजमानम दिव्य द्रुमे लता कुलम चित्र पक्षी मधुब्राते बंसी बटे विराजितम। वहां हजार दल के कमल का सुगंधित पराग चारों ओर बिखर रहा है शीतल वायु मंद गति से बहती रहती है। पुलने शीतले वायुर मंद गामी वहत तिलम सहस्त्र दल पद्मा नाम रजो विक्षेपयन मुहुं। वृंदावन के मध्य में 32 वनों से युक्त एक निज निकुंज है बीच में 32 वन है और उसमें निज निकुंज है चार दीवारियां और खाइयां उसे सुशोभित कर रही हैं। उसके आंगन का भाग लाल रंग के अक्षय बटों से अलंकृत है। मध्य नीचे निकुंजोस्ती द्वात्रिंशन वन संयुक्त प्राकार परिखा युक्तो तृणाक्षय बटाजिरह। पद्मराग जैसी 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवालें हैं 7 प्रकार की मणियों से बनी दीवालें हैं और आंगन के पत्थर बड़ी शोभा पाते हैं। करोड़ों चंद्रमाओं की छवि धारण करने वाले चंदोबे उसे अलंकृत करते हैं और उनमें चमकीले गोले लटक रहे हैं। सतधा पद मेरा गाग्रा जिन कुड्य विभूषित कोटिंदु मंडलाकार एर गुलिका द्युति। फहराती हुई दिव्य पताकाएं एवं खिले हुए फूल मंदिर एवं मार्गों की शोभा बढ़ाते हैं। वहां के भ्रमरों का जो ध्वनि है संगीत की सृष्टि करती है और मत मयूरों और कोकिलों के कल्लव सदा श्रवण गोचर होते हैं। पतन पता कैर दिव्याभ पुष्प मंदिर वर्म भी जात भ्रमर संगीतो मत बर ही फिके सुनहां। वहां बाल सूर्य के समान कांतिमान अरुण पीत कुंडल धारण करने वाली ललनाएं सौ सौ चंद्रमाओं के समान गोरे वर्ण से उद्भासित होती हैं। स्वच्छंद गति से चलने वाली वे सुंदरियां मणि रत्न के भित्तियों में अपना मनोहर मुख देखती हुई वहां के रत्न जड़ित आंगन में भागती फिरती हैं। उनके गले में हार और बाहों में केयूर शोभा देते हैं। नूपुर और करधनी के मधुर झनकार वहां सदा गूंजती रहती है। वे गोपांगनाएं मस्तक पर चूर्ण मणि धारण किए रहती हैं। बालार्घ कुंडल धरा सतचंद्र प्रभा स्त्रियां स्वच्छन्न गतयो रत्न पश्यन्त्यः सुंदरं मुखम् रत्नाजिरेषु धावन्त्यो हारकेयूर सम्भूषितां कुणन्नोपरे किंकिण्य चूडामणि विराजितां। वहां द्वार द्वार पर कोटि कोटि मनोहर गौओं के दर्शन होते हैं और वे गौएं दिव्य आभूषणों से विभूषित होने से सफेद पर्वत के समान प्रतीत होती हैं। कोटिशा कोटिशो गावो द्वारे द्वारे मनोहर श्वेत पर्वत संकाशा दिव्य भूषण भूषिता। सब की सब दूध देने वाली और नई अवस्था की हैं। वे सुशीला सुरुचा और सद्गुणवती हैं। सभी बछड़ों के साथ और पीली पूछ वाली हैं। ऐसी भव्य रूप वाली गौएं वहां सब ओर विचर रही हैं। पयश्चुन्य तरुण्यश्चा शील रूप गुणेरियुता सबत्ता पीते पुच्छाश्चा मृजंत्यो भव्य मूर्तिकाम। उनके घंटों तथा मंजीरों से मधुर ध्वनि होती रहती है। किनके घंटे और मंजीर हैं? गौओं के। किंकिणी जालों से विभूषित उन गौओं के सींगों में सोना बढ़ा रहता है। वे सोने के जैसे हार और मालाएं धारण करती हैं। उनके अंगों से प्रकाश छिटकता रहता है। देखो कैसी गौ है। घंटा मंजीर संदावा किंकिणी जाल मंडिता हेम सिंगो हेम तुल्य हार माला स्फुरत प्रभाव। सभी गौएं भिन्न भिन्न रंग वाली हैं। अब देखो रंग कैसा है। कोई उजली है, कोई काली है, कोई पीली है, कोई लाल है, कोई हरी है, कोई तांबे के रंग की है, कोई चितकबरे रंग की है और किन्हीं का वर्ण धुएं जैसा है और बहुत सी कोयल के समान काली हैं। पाटलाहारिता साम्रा पीता श्यामा विचित्रिता धूम्रा को गिल वर्णाश्चा यत्र गावस्तुनेक धाम। दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली हैं। क्या समझे? हाँ, एक एक गाय दूध देने में समुद्र की तुलना करने वाली है। उन गायों के शरीर पर तरुणियों के कर चिन्ह शोभित हैं। हाथ के छाप लगे हुए हैं अर्थात युवतियों के हाथों के रंगीन छापे दिए गए हैं। हिरण के समान छलांग भरने वाले बछड़ों से उनकी अधिक शोभा बढ़ जाती है। उन गौओं की समुद्र बंद दुग्धदाश्च तरुणे कर चिन्हिता कुरंग विलगन कुरंग विलंगन धिर गोवत्तेर मंडिता शोभा। गायों के झुंड में विशाल शरीर वाले सांड भी इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी लंबी गर्दन और बड़े बड़े सींग हैं। उन सांडों को साक्षात धर्म धुरंधर कहा जाता है। गोगणेशु महावृषा दीर्घ कंधर श्रृंगाढ़िया यत्र धर्म धुरंधरा। गौओं की रक्षा करने वाले चरवाहे भी अनेक हैं। उनमें से कुछ तो हाथ में बेंत की छड़ी लिए हैं, दूसरों के हाथ में सुंदर बांसुरी शोभा पाती है। उन सबके शरीर का रंग श्याम है। ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र की लीलाएं ऐसे मधुर स्वरों में गाते हैं कि उसे सुनकर कामदेव भी मोहित हो जाता है। गोपाला में त्रहस्ताशां श्यामा बंसी धरा परा कृष्ण लीलाम प्रगायन्तो रागैर मदन मोहने। उस दिव्य निज निकुंज को संपूर्ण देवताओं ने प्रणाम किया और भीतर चले गए। वहां उन्हें हजार दल वाला एक बहुत बड़ा कमल दिखाई पड़ा। वो ऐसा सुशोभित था मानो प्रकाश का पुंज हो। अब ध्यान से सुनो, उस महल के अंदर हजार दल वाला कमल है। ये थम निज निकुंजम तम नत्वा मध्य गता सुरा ज्योतिषाम मंडलम पद्मम सहस्र दले शोभितम। अब देखो, हजार दल का कमल है, उसके ऊपर 16 दल का कमल है, और उसके भी ऊपर 8 दल वाला कमल है, उसके ऊपर चमचमाता हुआ एक ऊंचा सिंहासन है। उस सिंहासन में 3 सीढ़ियां हैं और 3 सीढ़ियों के ऊपर परम दिव्य सिंहासन कौस्तुभ मणि से बना हुआ है। देखो कैसा वर्णन है। उसी पर भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री राधिका के साथ विराजमान है। ऐसी झांकी उन समस्त देवताओं को मिली। तदूर्धम 16 दलम ततोष्ट दल पंकजम तस्योपरि स्फुरत दीर्घम सोपान त्रय मंडितम सिंहासनम परम दिव्यम कौस्तुभे खचितम सुभे तद्रसुर देवता सर्वा श्री कृष्णम राधयायुतम। वे युगल रूप भगवान 8 दिव्य सखियों से समन्वित और श्री दामा आदि 8 गोपालों से सेवित हैं। दिव्य रस सखी संगैर मोहिन्यादि भिरन्वितम श्रीमादा श्री दामाद्यं सेव्यमानम अष्ट गोपाल सेवित। उनके ऊपर हंस के समान सफेद रंग वाले पंखे झले जा रहे हैं और हीरों से बनी मूठ वाले चमर डुलाए जा रहे हैं। भगवान की सेवा में करोड़ों छत्र प्रस्तुत हैं जो करोड़ चंद्रमाओं की प्रभा जैसे हैं। हंसा भैरव जनाम दोले चामरे वज्र मद्र मुष्टि भी कोटि चंद्र प्रतीका है सेवितम छत्र कोटि भी। भगवान श्री कृष्ण के बाम भाग में विराजित श्री राधिका जी से उनकी बाएं भुजा सुशोभित है। भगवान ने स्वेच्छा पूर्वक अपने दाहिने पैर को टेढ़ा कर रखा है। वे हाथ में बांसुरी धारण किए हुए हैं। उन्होंने मनोहर मुस्कान से भरे मुखमंडल और भ्रुकुटी बिलास से अनेक कामदेवों को मोहित कर रखा है। श्री राधिका अलंकृत वाम बाहुं स्वच्छंद वक्रीकृत दक्षिणांगं बंसीधरं सुंदर मंदहासं भ्रूमंडला मोहित काम राशि। उन श्री हरि की मेघ के समान श्यामल कांति है, कमल दल की भांति बड़ी विशाल उनकी आंखें हैं, घुटनों तक लंबी बड़ी भुजाओं वाले वे प्रभु अत्यंत पीले वस्त्र पहने हुए हैं। भगवान गले में सुंदर बनमाला धारण किए हुए हैं जिस पर वृंदावन में वितरण करने वाले भ्रमरों की गुंजार हो रही है। घने प्रभम पद्म दलाय ते क्षण प्रलंब बाहुम बहु पीत बात वृंदावनोन्मत्त मिलिंद वृंदावनोन्मत्त मिलिंद संदेर विराजितम श्रीवन मालया हरिम। वे पैरों में घुंघरू और हाथों में कंकण की छटा छटका रहे हैं। अति सुंदर मुस्कान मन को मोहित कर रही है। श्रीवत्स का चिन्ह बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किरीट कुंडल बाजूबंद और हार यथा स्थान भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। कांची कला कंकण नूपुर द्युतिम लसन मनोहारी महो ज्वल स्मितम श्रीवत्स रत्नोत्तम कुंतल श्रियम कीट हारांगद कुंडल किसम। देखो कितना सुंदर वर्णन है, इसमें लिखा है भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे। अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर ब्रीद भाव से उन परम पुरुष श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम किया। दृष्ट्वा तमानंद समुद्र मग्नवन
प्रहर्षिताश्रु कलाकुले क्षणान् ततः सुरा प्राञ्जलयो नपाननां ने मुर्मुरारिं पुरुषं परायणम्।
देखा कितना जो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं देवाप्य स्वरूप से नित्यम दर्शन कांक्षना, इस रूप का दर्शन जो है ना देवता भी करना चाहते हैं, हमेशा करना चाहते हैं। और यहां पर क्या देखा है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे दिव्य दर्शन प्राप्त करके संपूर्ण देवता आनंद के समुद्र में गोता खाने लगे, अत्यंत हर्ष के कारण उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। कृष्ण का इतना सुंदर आनंदमय रूप है, जो मूर्ख हैं वो जो है ना कृष्ण को देखने की इच्छा नहीं करते हैं। तो कितना दुर्भाग्य, कितनी मूर्खता है ना। तो इस श्लोक में भगवान जो है ये इशारा कर रहे हैं कि हमें कृष्ण को दर्शन, कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा करनी चाहिए। अगर इन आंखों से कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ तो ये आंखें क्या है, मोर पंख की आंखों के समान है। अगर ये आंखें जो है कृष्ण का दर्शन नहीं करती हैं तो इन आंखों का कोई लाभ नहीं है। मोर पंख की आंखें क्या होती हैं, सुंदर होती हैं लेकिन उनसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो कृष्ण का दर्शन नहीं किया तो इन आंखों का कोई फायदा नहीं है, है कि नहीं। तो यहां कृष्ण ये इशारा कर रहे हैं कि देवाप्य स्वरूप से नित्यम दर्शन कांक्षना, कि देवता भी इस रूप की हमेशा दर्शन की आकांक्षा करते हैं। तो जो देवता हैं वो कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। दो प्रकार के लोग हैं संसार में, या तो देवता हैं या असुर हैं, है ना। तो अभी तक असुर हैं, गीता की टीका भी कर रहे हैं लेकिन तो भी कृष्ण के रूप को भौतिक मान रहे हैं, क्या है, असुर है। वो गीता की टीका भी क्या है, आसुरी टीका है। रूपा जी कहते हैं असुरों की टीकाएं बहुत सी हैं गीता पर भी, जो कृष्ण को निराकार मानते हैं, परम सत्य को निराकार मानते हैं, या कृष्ण का शरीर भौतिक मानते हैं, बहुत असुर हैं। तो एक और घटना है जिसमें कि दुर्वासा मुनि कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए हैं, तो ये मैं सुना रहा हूं। दुर्वासा जी श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए जब ब्रजमंडल में आए तो उन्होंने कालिंदी के निकट पवित्र बालुका के पुलिन के स्थल में श्री कृष्ण को निकट से देखा। एकदा कृष्ण चंद्रस्य दर्शनार्थम परस्य च दुर्वासा मुनि शार्दूलो ब्रजमंडल मायौं कालिंदी निकटे पुण्ये सैकते रमण स्थले महावने समीपे च कृष्ण मारा ददर्श। विशोभाशाली मदन गोपाल बालकों के साथ वहां लौटते, परस्पर मल्लयुद्ध करते और भांति भांति की बाल किरणें कर रहे थे। श्रीमन मदन गोपालम लुठंतम बाल कैसा परस्परम प्रयोध्यंतम बाल केलिम मनोहरम। इन सब कारणों से वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके साये अंग धूल से धूसरित थे, मस्तक पर काले घुंघराले केश शोभा पा रहे थे और नग्न वेश में बालकों के साथ दौड़ते हुए श्री हरि को देखकर दुर्वासा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। धूलि धूसर सर्वांगम वक्र केशम दिगंबरम धावंतम बालक सार्धम हरिम वीक्ष सविस्मिता। मुनि मन में कहने लगे क्या यही षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न ईश्वर है, फिर यह बालकों के साथ धरती पर क्यों लौट रहा है। मेरी समझ में है केवल नंद का पुत्र है, परात्पर श्री कृष्ण नहीं है। ईश्वरोऽयं भगवान कथम बाले लुठन भुवि अयम दुनंद पुत्रोऽस्ति न श्री कृष्ण परात्परः। तो जब महामुनि दुर्वासा इस प्रकार मोह में पड़ गए तब खेलते हुए श्री कृष्ण स्वयं उनके पास जाकर उनकी गोद में आ गए, फिर उनकी गोद से हट गए। श्री कृष्ण की दृष्टि बाल सिंह के समान थी, वे हंसते और मधुर वचन बोलते हुए पुनः मुनि के सम्मुख आ गए और सहसा हंसते हुए श्री कृष्ण के श्वास से खींचकर मुनि उनके मुंह में समा गए। अब देखिए क्या हुआ, कृष्ण के मुख में दुर्वासा मुनि चले गए। अब कृष्ण के मुख के अंदर जाकर के उन्होंने एक विशाल लोक देखा जिसमें जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे हैं। इत्थं मोहं गतये तत्र
दुर्वास से महामुनो क्रीडन कृष्ण तत्समीपे तदंके यागता स्वयं पुनर्विनिर्गतो ह्यंकान बाल सिंहावलोकन हसन कलम ब्रुवन कृष्णाम सम्मुखा पुनरागता हसतस्तस्य चामुखे प्रविष्टा सुसनेर्मुनि दर्शान्यम महालोकम सारण्यम जनवर्जितम। अब उन जंगलों में भ्रमण करते हुए मुनि बोल उठे, मैं कहां से यहां आ गया। इतने में ही उस महामुनि को एक अजगर निगल गया। अरण्येषु भ्रमन् तत्र कुतः प्राप्त इति ब्रुवन् तदेवाजगरेणापि निर्गीर्णो भून् महामुनिः। अब अजगर के पेट में पहुंचने पर मुनि ने सातों लोकों और पातालों सहित समूचे ब्रह्मांड का दर्शन किया। द्वीप में भ्रमण करते हुए दुर्वासा मुनि एक श्वेत पर्वत पर ठहरे। उस पर्वत पर 100 करोड़ वर्षों तक भगवान का भजन किया, तपस्या की। इतने में नैमित्तिक प्रलय का समय आया। समुद्र सब ओर से पृथ्वी को डुबाते हुए मुनि के पास आ गए। दुर्वासा मुनि उन समुद्रों में बहने लगे और जल का कहीं अंत नहीं मिल रहा था। तपस्ताप वर्षाणाम शतकोटि प्रभु भजन नैमित्तिकाख्ये प्रलये प्राप्ते विश्व भयंकरे आगच्छन्ता समुद्रास्ते प्लावयन्तो धरातलम् वहन्ते सूच दुर्वासम न प्रापान्तम् जलस्य च। इसी अवस्था में 1000 युग व्यतीत हो गए। अब 1000 युग का मतलब 4 अरब 32 करोड़ साल, और 1 अरब साल पहले तो कुल मिला के 5 अरब 32 करोड़ साल हो गए। अब मुनि जल में डूब गए, स्मरण शक्ति समाप्त हो गई। अब पानी के भीतर उन्हें एक दूसरे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। तच्छिद्रे च प्रविष्टासौ दिव्याम सृष्टिम गतस्तताम दंड मूर्धनि लोकेषु विधेरायो समम चरम। उस ब्रह्मांड के छिद्र में प्रवेश करने पर वे दिव्य सृष्टि में पहुंचे और वहां से उस ब्रह्मांड के शुरू भाग में विद्यमान लोकों में ब्रह्मा की आयु पर्यंत विचरते रहे। ब्रह्मा की आयु 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इसी प्रकार वहां एक छिद्र देखकर अब श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उसके भीतर घुसे, तो घुसते ही उस ब्रह्मांड के बाहर आ गए। अब तत्काल उनको बहुत बड़ा जल दिखाई दिया। उस जल राशि में उन्हें करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बहते हुए दिखाई दिए। और तब मुनि ने उस जल को ध्यान से देखा तो पता चला कि बिरजा नदी है। उस नदी के पार पहुंचकर मुनि ने साक्षात गोलोक में प्रवेश किया। उन्हें वृंदावन दिखाई दिया, गोवर्धन सुंदर यमुना जी दिखाई दी, और उनका दर्शन करके मुनि बड़े प्रसन्न हुए। तत्पारम प्रगता साक्षात गोलोकम प्राविशन मुनि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनम शुभम। फिर वे मुनि जब निकुंज के भीतर घुसे तब उन्होंने अनंत करोड़ सूर्यों के समान ज्योतिर्मंडल के अंदर दिव्य लाख दल के कमल पर विराजमान साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को देखा, जो असंख्य गोप गोपियों से घिरे और करोड़ों करोड़ों गऊओं से संपन्न थे। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति उन भगवान श्री कृष्ण के साथ ही उनके गोलोक का भी मुनि को दर्शन हुआ। परिपूर्णतमम साक्षात श्री कृष्णम पुरुषोत्तमम असंग ब्रह्मांड पतिम गोलोकम स्वम दर्शयाम श्री कृष्णस्यापि हसता प्रविष्टस्तन्मुखे मुनि पुनर्विनिर्गतो पश्यन् बालम श्री नंद नंदनम। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। हंसते समय उनके श्वास खींचकर दुर्वासा मुनि उनके मुंह के भीतर पहुंच गए। उस मुख से पुनः बाहर निकलने पर उन्होंने उन्हीं बाल रूपधारी श्री नंद नंदन को देखा, जो कालिंदी के निकट बालुका के रमण स्थल में बालकों के साथ विचर रहे थे। महावन में श्री कृष्ण का उस रूप में दर्शन करके दुर्वासा मुनि ये समझ गए कि श्री कृष्ण साक्षात परात्पर ब्रह्म है। फिर तो उन्होंने श्री नंद नंदन को बार बार नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा। अब मुनि ने क्या प्रार्थना की, जिनके नेत्र नूतन सत दल कमल के समान विशाल हैं और ओठ बिंबाफल की डालिमा को तिरस्कृत करते हैं और अंग जलधर की श्याम मनोहर कांति को छीने लेते हैं, जिनके मुख पर मंद मुस्कान की दिव्य छटा छा रही है और जो सुंदर मधुर मंद गति से चल रहे हैं, उन बालक श्री नंद नंदन को मैं मन से प्रणाम करता हूँ। बालम नवीन सतपत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजल में रुचि मनोज्ञम मंदस्मितम मधुर सुंदर मंद यानम श्री नंद नंदन महम मनसा नमामि।
जिनके चरणों में मंजीर और नूपुर झंकृत हो रहे हैं और कटी में खन खनाती हुई करधनी शोभा दे रही है, सुंदर कंठ हार से शोभित हैं और कज्जल की बिंदी मस्तक में शोभा पा रही है, उन यमुना के तट पर जो क्रीड़ा में संलग्न हरी हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। मंजीर नूपुर रणन नव रत्न कांची श्रीहार के सरी नखे प्रतियंत्र संगम दृष्ट्यार्तिहारी मसि बिंदु विराजमानम वंदे कलिंद तनुजा तट बाल केलिम।
जिनके चंद्रमा के समान मुख पर घुंघराले काले केश हैं तथा जिनका मस्तक कुछ झुका हुआ है, उन श्री कृष्ण तथा उनके अग्रज बलराम को मैं सादर नमस्कार करता हूँ।
पूर्ण इंदु सुंदर मुखो परि कुंचिताग्राम केशा नवीन घन नील निभा स्फुरंती राजंत आनत सिरा कुमुदस्य यस्य नंदात्मजाय सबलाय नमो नमस्ते।
जो प्रातः काल उठकर इस श्री नंद नंदन स्तोत्र का पाठ करता है उसके नेत्रों के समक्ष श्री नंद नंदन सानंद प्रकट होते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।